नमस्कार भारत, आज है 10 मार्च दिन शुक्रवार और मैं हूं अपूर्व कृष्ण। उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति मजबूत होने की भविष्यवाणियों के बीच अखिलेश यादव ने दिए मायावती से हाथ मिलाने के संकेत।
हाँ, अगर सरकार के लिए जरूरत पड़ेगी तो देखिए, कोई नहीं चाहेगा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो, बीजेपी रिमोट कंट्रोल से उत्तर प्रदेश को चलाए, तो ये तो कोई नहीं चाहेगा।
बीएसपी ने अखिलेश के बयान का ये अर्थ निकाला,
इसका मतलब कि वो हार गए और डर से वो लोग ऐसा बोल रहे हैं।
भाजपा को अखिलेश के बयान पर कोई हैरानी नहीं।
जो बात अखिलेश जी कह रहे हैं वो जनता जान रही थी कि सपा बसपा कांग्रेस तीनों एक दूसरे से मिले हुए।
भटक कर सीमा पार कर गए पाकिस्तानी कश्मीर के दो बच्चों को भारत आज लौटाएगा वापस, होगी वॉशिंगटन डायरी भी। पर पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, तृप्ति श्रीवास्तव से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीबीसी हिंदी के साथ बातचीत में संकेत दिए हैं कि चुनाव परिणामों में यदि उन्हें या किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति शासन की जगह वो मायावती से हाथ मिलाना पसंद करेंगे। इस पर बीएसपी के विधायक दल के नेता गया चरण दिनकर ने कहा कि अखिलेश चुनाव हार गए हैं और डर से ऐसा बोल रहे हैं, अभी तो मतगणना होना बाकी है, उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन आगे है और अभी से अंदाजा लगाना कि कौन हार गया और कौन जीत गया सही नहीं है। परिणाम आने के बाद प्रदेश की जैसी परिस्थितियां होंगी उसे देखते हुए मायावती जी फैसला लेंगी, ये उनका अधिकार है। व्हाइट हाउस का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि CIA के कंप्यूटर सिस्टम पुराने हो चुके हैं और उन्हें आधुनिक बनाने की जरूरत है। विकीलीक्स ने एक दिन पहले ही CIA के जासूसी संचालन से जुड़े कुछ दस्तावेज प्रकाशित किए थे। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता शॉन स्पाइसर ने पत्रकारों को बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप CIA के निदेशक माइक पोम्पियो से राष्ट्रीय सुरक्षा पर बातचीत करेंगे। वहीं इससे पहले विकीलीक्स ने कहा कि उनके पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में छेड़खानी कर CIA की कथित हैकिंग तकनीक की विस्तृत जानकारी है। ये दस्तावेज बताते हैं कि कैसे टीवी या स्मार्टफोन को सुनने के उपकरण में बदला जाता है। लंदन में विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज ने कहा,
We have decided to work with them to give them some exclusive access.
हमने उनके साथ काम करने का निर्णय लिया है ताकि हमें अतिरिक्त तकनीकी जानकारी मिल सके। एक बार जब हम इस सामग्री में से महत्वपूर्ण जानकारी छांट लेंगे तब हम और भी जानकारियां प्रकाशित करेंगे। ये थे जूलियन असांज के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। डोनाल्ड टस्क दोबारा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। उन्हें एक के मुकाबले 27 वोट मिले। जीतने के बाद टस्क ने वादा किया कि एक दूसरे के लिए बेहतर और अधिक संयुक्त यूरोपीय संघ के लिए बिना किसी अपवाद के सभी राज्यों के लिए काम करेंगे। टस्क की उम्मीदवारी को अपने ही देश पोलैंड में विरोध का सामना करना पड़ा था। उन पर पोलिश के राष्ट्रीय मामलों में दखलंदाजी का आरोप लगा था। वो इस बात से इनकार करते हैं कि विरोध की वजह से उनकी स्थिति कमजोर होगी। टस्क का कहना है कि वह राजनीतिक अलगाव से पोलैंड की सरकार की रक्षा के लिए काम करेंगे। अपने बयान में टस्क ने कहा,
First of all, thank you for your trust in me.
सबसे पहले मुझ पर भरोसा करने के लिए आप सबका धन्यवाद। उससे भी पहले इस एकता को दिखाने के लिए धन्यवाद। ये संदर्भ के हिसाब से विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन आपका फैसला हमारी एकता को दर्शाता है। मैं आप सबके साथ मिलकर काम करूंगा। मैं यूरोप की एकता के लिए समर्पित हूं और मैंने खुद से वादा किया है आप लोगों को निराश नहीं करूंगा। ये थे डोनाल्ड टस्क के शब्द। 6 मुस्लिम देशों के नागरिकों की अमरीकी यात्रा प्रतिबंधित करने के मुद्दे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कई कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में हवाई में के मुकदमा दर्ज कराने के बाद एक दिन बाद ही वॉशिंगटन स्टेट भी न्यूयॉर्क, मैसाचुसेट्स और ओरेगन के साथ संशोधित प्रतिबंध को रोकने के लिए मुकदमा करने जा रहा है। वॉशिंगटन ने ही राष्ट्रपति ट्रंप के वीजा से जुड़े पहले कार्यकारी आदेश को कानूनी चुनौती दी थी जिसमें उसकी जीत हुई थी और फेडरल जज ने देश भर में इस आदेश को रोकने का फैसला सुनाया था। अब राज्य के अटॉर्नी जनरल ने पूछा है कि संशोधित यात्रा प्रतिबंध को भी असंवैधानिक क्यों न माना जाए। वैज्ञानिकों ने इबोला के जानलेवा वायरस से चिंपांजियों गोरिल्ला को बचाने के लिए उन्हें मुंह के जरिए टीका देने की बात कही है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अपूर्व कृष्ण। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में मतगणना कल होनी है, मगर उससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल बीबीसी को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया और उसमें जो कुछ कहा उससे देश की राजनीति में खलबली सी मच गई है, क्योंकि उसमें अखिलेश ने एक ऐसे भावी समीकरण का इशारा दिया है जिससे सारे सियासी समीकरण बदल सकते हैं। उन्होंने कल लखनऊ में बीबीसी संवाददाताओं दिलनवाज पाशा और विनीत खरे के साथ फेसबुक पर एक लाइव इंटरव्यू में विश्वास जताया कि नतीजा उनके और कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ तो। सुनिए दिलनवाज पाशा का सवाल और अखिलेश का जवाब।
अगर आप बड़ी फाइट बीजेपी से मान रहे हैं तो क्या ये समझा जाए कि चुनाव नतीजों के बाद बसपा से गठबंधन का रास्ता बंद नहीं है?
नहीं, नहीं, गठबंधन के लिए मैं अभी इसलिए नहीं कह सकता हूं कि हम खुद सरकार में बनाने जा रहे हैं, और जो बहुजन समाज पार्टी की नेता हैं उनको मैंने एक रिश्ते से हमेशा सम्मान दिया है, तो ये स्वाभाविक है लोग ये मानेंगे कि अगर कहीं कमी होगी तो हम बहुजन समाज पार्टी के साथ ना चले जाएं या बहुजन समाज पार्टी का सहयोग ना ले लें। ये बात अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मैं ये कहता हूँ हमारी और कांग्रेस, समाजवादी और कांग्रेस का बहुमत आने वाला है, बहुमत के साथ सरकार बनेगी।
आपने अभी तक गठबंधन को लेकर जो हमारे जितने भी सवाल हैं स्पष्ट जवाब नहीं दिया है, तो क्या ये माना जाए कि आप संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी जिससे मिलेगा साथ लेंगे?
मैं अभी भी कहना चाहता हूं, मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी को किसान, महिलाओं ने और नौजवानों ने समर्थन दिया है, बीजेपी कोई काम नहीं बता पाई है। परिस्थितियां क्या बनेंगी वो तो वोट के बाद पता लगेगा, खुल जाएगा। समाजवादी और कांग्रेस दोनों ही को अच्छी सीटें जीतने आनी, अकेले ही सरकार बनाएंगे। हाँ, अगर सरकार के लिए जरूरत पड़ेगी तो देखिए कोई नहीं चाहेगा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो, बीजेपी रिमोट कंट्रोल से उत्तर प्रदेश को चलाए, तो ये तो कोई नहीं चाहेगा।
तो जरूरत पड़ी तो बीजेपी को रोकने के लिए अखिलेश किसी और संभावना पर विचार कर सकते हैं, यानी इसे एक संकेत माना जा सकता है कि वो मायावती से हाथ मिलाने की संभावना को खुला रखना चाहते हैं। मगर बहुजन समाज पार्टी इस संभावना को कितना गंभीर मान रही है, जानने के लिए हमारे सहयोगी दिव्या आर्य ने बहुजन समाज पार्टी के विधायक दल के नेता गया चरण दिनकर से संपर्क किया।
इसका मतलब कि वो हार गए और डर से वो लोग ऐसा बोल रहे हैं। अभी तो मतगणना बकाया है, मतगणना के बाद ही फैसला हो पाएगा कि बीएसपी आगे है कि बीजेपी आगे है कि सपा आगे है।
नहीं, उनका तो यही कहना है कि उनको पूर्ण बहुमत मिलेगा।
मतगणना के बाद जो रिजल्ट आएंगे, जो प्रदेश की परिस्थितियां पैदा होंगी, सर्वाधिकार है उनको, वो अपना निर्णय लेंगे क्या करना।
बहुजन समाज पार्टी का क्या सोचना है इस पर?
बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाएगी,
और अगर कोई ऐसी सिचुएशन सामने आती है जिसमें पूरा बहुमत आपको ना मिले,
ऐसी सिचुएशन नहीं आने पाएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बीएसपी की बनेगी।
हर स्थिति के लिए आप लोगों ने भी एक तैयारी मन में की ही होगी, तो अगर एक मिनट के लिए ये सोच लिया जाए कि बहुमत नहीं आता है तो क्या रणनीति रहेगी फिर बसपा की?
कैसे सोच लें, ये तो मीडिया वाले सोच रहे हैं और लोग सोच रहे हैं, हम थोड़ी सोच रहे हैं।
और अगर सपा ऐसी पेशकश,
ये इलेक्शन जो है सरकार बनाने के लिए लड़े हम,
और अगर किसी को भी बहुमत नहीं मिलता है तो उस स्थिति में आप क्या चाहेंगे, राष्ट्रपति शासन आ जाए?
राष्ट्रपति शासन तो तब लगेगा ना जब कोई बहुमत नहीं बना पाएगा।
जी, मैं वही कह रही हूँ, सूरत में क्या बसपा की रणनीति होगी?
वो भविष्य के बारे में क्या बताया जा सकता है, मतगणना के बाद ही हम लोग कुछ कह पाएंगे।
क्या बसपा सपा से हाथ मिलाने के बारे में सोच सकती है, क्या ये एक ऑप्शन है?
नहीं, ये हमें कहने का अधिकार नहीं,
पर उस विकल्प को अभी खुला रखा हुआ है।
ये हमें कहने का अधिकार नहीं है, ये तो बहन जी का मामला है, जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं वो क्या करती हैं ये उनका मामला, जो उनका फैसला है उस फैसले में पूरी पार्टी
फैसला बहन जी करेंगी। ये थे यूपी में बीएसपी विधायक दल के नेता गया चरण दिनकर। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अखिलेश यादव का बयान ये साबित करता है कि सपा, कांग्रेस और बसपा के बीच सांठगांठ है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के महासचिव विजय बहादुर पाठक ने बीबीसी से कहा,
जिस तरह से सपा, बसपा और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में तीनों एक हैं, केंद्र की यूपीए सरकार के समय तीनों एक साथ थे, और अगर पीछे आप जाएंगी तो अंदाजा लगेगा कि उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार के घपले और घोटालों को 5 वर्षों तक अखिलेश यादव जी ने संरक्षण दिया। इसलिए अगर वो ये बात कहते हैं कि वो किसी ऑप्शन पर विचार कर सकते हैं, जो बात अखिलेश जी कह रहे हैं वो जनता जान रही थी कि सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों एक दूसरे से मिले हुए।
ये थे यूपी भाजपा के महासचिव विजय बहादुर पाठक। भाजपा ने उत्तर प्रदेश को फतह करने के लिए सारी ताकत झोंक दी है, और चुनाव में वो अकेली ऐसी पार्टी थी जो बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के मैदान में थी। सपा की ओर से अखिलेश नायक थे, बसपा की ओर से मायावती, मगर भाजपा का चुनावी चेहरा थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसे में सवाल उठता है कि कल अगर भाजपा की किस्मत चमकी और सत्ता में आने का मौका मिला तो मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। समीर आत्मज मिश्र ने इसका अंदाजा लेने की कोशिश की।
यूं तो बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में राजनाथ सिंह, उमा भारती और योगी आदित्यनाथ जैसे वरिष्ठ और पुराने नेताओं से लेकर अमित शाह और श्रीकांत शर्मा तक के नाम तैर रहे हैं, लेकिन न तो राजनीतिक पर्यवेक्षक कुछ ठोस अनुमान लगा पा रहे हैं और न ही पार्टी के नेता कुछ भी स्पष्ट करने की स्थिति में है। पार्टी के नेता अभी भी यही बात दोहरा रहे हैं कि नतीजों के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता इसे तय करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा कहते हैं,
देखिए हर स्टेट की हमारी अपनी अलग स्ट्रेटजी होती है। अब जैसे महाराष्ट्र में हमने अनाउंस नहीं किया, हरियाणा में नहीं किया, तो ये हमारी रणनीति का हिस्सा होता है, कहाँ करना कहाँ नहीं करना। अभी तक तो सिर्फ यही पूरा फोकस रहा है कि कैसे जो हमने 265 प्लस का टारगेट रखा था उसको कैसे अचीव किया जाए, और हमारी तो पूरा स्ट्रेटजी उसी पर रही। जहाँ तक कौन क्या वो रहेगा, तो हमारे एक व्यवस्था है, पार्लियामेंट बोर्ड हमारे यहाँ तय करता है सारी चीजें।
श्रीकांत शर्मा खुद मथुरा से चुनाव लड़े हैं और उनके समर्थन में जनसभा करने पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सार्वजनिक रूप से उनके बारे में किसी बड़ी संभावना का जिक्र किया था। जानकारों का कहना है कि यूपी विधानसभा का चुनाव बीजेपी ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी पर ही केंद्रित कर दिया, उससे ये साफ है कि बहुमत मिलने पर नरेंद्र मोदी की पसंद का ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार सुनीता एरन कहती हैं,
अगर इनको बहुमत मिल जाता है तो वो नया फेस लाएंगे और वहां से रिमोट कंट्रोल करेंगे, दिल्ली से यहाँ पे अपने अधिकारियों को बिठा देंगे। पर अगर इनको कोएलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ती है या तोड़फोड़ करनी पड़ती है सरकार बनाने के लिए, तब इनको एक मैच्योर पॉलिटिशियन की जरूरत पड़ेगी। तब हो सकता है कि वो जो इनके जो मचे हुए नेता है उन्हीं में से वो किसी को भेजे।
हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी ने जिस तरह से राज्य के पिछड़े वर्गों में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश की है और पिछड़े वर्गों के नेताओं को दूसरी पार्टियों से लाकर जोड़ा है, ऐसी स्थिति में तमाम लोग प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य में भी ये संभावना देख रहे हैं। वहीं विधानसभा चुनाव में गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ की बढ़ी सक्रियता और कथित तौर पर उग्र हिंदूवादी छवि को देखते हुए उनका नाम भी इस रेस में काफी आगे बताया जा रहा है। लेकिन जानकार कहते हैं कि तमाम ऐसी वजहें भी हैं जिनकी वजह से योगी आदित्यनाथ की दावेदारी कमजोर हो सकती है। इसके अलावा लखनऊ के मेयर दिनेश शर्मा, केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा और महेश शर्मा की भी चर्चाएं हैं। सुनीता आयरन कहती हैं,
बीजेपी जो नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी है उसमें बहुत कुछ ही पता चलता है। बट कई लोग केशव मौर्य जी का भी नाम दे रहे हैं और आपको अचंभा होगा कई लोगों ने अमित शाह जी का भी नाम दे दिया, क्योंकि 2019 एक बहुत ही क्रूशल है। पहले सोचा जा रहा था कि राजनाथ सिंह जी वापिस आएंगे, बट डिपेंड करेगा कि अगर इनकी कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है और उनको बहुत ही कोई सीनियर आदमी की जरूरत पड़ती है, तब तो ऐसा होगा कि राजनाथ सिंह जैसे सीजन्ड पॉलिटिशियन को भेजा जाएगा। नहीं तो जैसे हरियाणा में उन्होंने गद्दर जी को देके अपनी सरकार चला रहे, वैसे वो यहाँ पे भी चला लेंगे।
अब देखना यह है कि सरकार बनाने की स्थिति में बीजेपी इन्हीं नामों में से किसी एक पर मुहर लगाती है या फिर सारे कयासों को धता बताते हुए कोई नया नेता पेश करती है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों से जुड़ी खबरें विस्तार से आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर पढ़ सकते हैं, बल्कि अखिलेश यादव का यह इंटरव्यू देख और सुन भी सकते हैं। और अगर आप बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने पर जाएं तो वहां अपनी टिप्पणियां, अपनी राय बांट भी सकते हैं। फिलहाल नजर डालते हैं आज छपे अखबारों के पन्ने क्या कह रहे हैं। तृप्ति श्रीवास्तव अखबारों के साथ स्टूडियो में तैयार हैं। तृप्ति, बताएं क्या है सुर्खियां।
अपूर्व जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लगभग आप सभी अखबार देख लीजिए, दो खबरें सभी अखबारों के पहले पन्ने पे आपको दिखाई देंगी। एक गुरुवार को हुए तमाम एग्जिट पोल के नतीजे और दूसरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की बीबीसी हिंदी से खास बातचीत, जिसमें अखिलेश ने BSP के साथ गठबंधन सरकार बनाने के संकेत दिए हैं।
जी, भारत में सभी TV चैनलों पर भी ये इंटरव्यू लगातार दिखाया जा रहा है, अखबारों में भी है,
सारे अखबारों में। और जहां तक एग्जिट पोल है वो भी कल काफी सुर्खियों में थे, तो आज आप चाहे हिंदुस्तान टाइम्स लें, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, मेल टुडे, सभी अखबारों ने एग्जिट पोल के नतीजों के आधार पर यही लिखा है कि 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। ये अखबारों ने भी एग्जिट पोल के नतीजों को आज तरजीह देते हुए लिखा है। एक खबर है जो कि महिला कर्मियों के लिए काफी खुशियां लेकर आएगी। महिला कर्मियों को अब 26 हफ्ते का मातृत्व अवकाश मिलेगा, ये खबर अमर उजाला ने अपने पहले पन्ने पर छापी है। इसमें लिखा है कि संगठित क्षेत्रों में महिलाओं को अब वेतन सहित 26 हफ्ते का अवकाश अवकाश मिलेगा। पहले यह अवधि 12 हफ्ते की थी। संसद ने मातृत्व अवकाश बढ़ाने से संबंधित बिल पारित कर दिया है। इससे संगठित क्षेत्र के 18 लाख महिला कर्मियों को फायदा मिलेगा। वहीं इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान को तरजीह दी है जिसमें उन्होंने लखनऊ में मारे गए कथित चरमपंथी सैफुल्ला के परिवार की तारीफ की है। सैफुल्ला के पिता सरताज ने उसका शव लेने से मना कर दिया था और कहा था कि जो देश के लिए ईमानदार नहीं उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। तो राजनाथ सिंह ने कहा कि हमें सरताज पर गर्व है और मुझे विश्वास है कि देश की संसद को भी उन पर गर्व होगा। और एक चलते चलते आखिरी खबर मैं आपको बता दूं जो हिंदुस्तान ने लिखी है कि एक शोध में पता चला कि छरहरी काया का राज डाइटिंग या जिम में नहीं बल्कि हड्डियों में छिपा है। एक हार्मोन उसके लिए जिम्मेदार होता है।
बहुत बहुत धन्यवाद तृप्ति अखबारों की सुर्खियां बताने के लिए।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो।
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत ने वीटो के अधिकार को छोड़ने की पेशकश की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने कहा है कि वीटो का मुद्दा अहम है लेकिन इसे संयुक्त राष्ट्र के सुधार के रास्ते में नहीं आने देना चाहिए। स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी पर चीन और पाकिस्तान हमेशा से अड़ंगा लगाते रहे हैं। भारत की ताज़ा पेशकश के नफे नुकसान को समझने के लिए रेहान फजल ने बात की संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि रह चुके राकेश सूद से।
हमने इसलिए ये सुझाव आगे रखा है क्योंकि हम शुरू से कह रहे हैं कि वीटो का जिस तरह इस्तेमाल किया गया है वो सही नहीं है, क्योंकि वीटो का इस्तेमाल एक पॉलिटिकल वजह से ज्यादातर हमने देखा है, खास तौर पे जब कोल्ड वॉर चल रहा था। तो ये इससे हमको हमेशा से ये लगा है कि वीटो का इस्तेमाल जो वो सही तरह से नहीं हुआ, उससे यूनाइटेड नेशंस एक्चुअली ब्लॉक हुआ है, ना कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर फैसले करने के अंदर सहयोग मिला है। क्योंकि इतने सालों से सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म जो है वो एक तरह से एक इम्पास में पड़ा हुआ है, उसका आगे कोई सिरा ही नहीं निकल रहा है।
ये जो इस प्रपोजल के खिलाफ जो लोग हैं, जो बहुत बड़ी एक लॉबी है जो इसके खिलाफ है, उनका कहना ये है कि साहब इसके बजाय अगर नॉन परमानेंट मेंबर्स की संख्या को बढ़ा दिया जाए या उनके टेन्योर को और बढ़ा दिया जाए तो वो बेहतर चीज होगी बनिस्बत इसके।
ये देखिए, हर एक पोटेंशियल परमानेंट मेंबर के साथ एक न एक एक या दो ऐसे मुल्क हैं जो रीजनल, उस रीजन की चीज की वजह से वो चाहते हैं कि वो ना हो परमानेंट मेंबरशिप में एक्सपेंशन, पर उसके बजाय कोई नॉन परमानेंट कैटेगरी में या एक सेमी परमानेंट कैटेगरी कुछ बनाई दी जाए जिससे अंदर ये वो लोग भी उसमें शामिल हो सकें। तो जैसे ये साफ है कहना कि अगर इंडिया परमानेंट मेंबरशिप के लिए अगर कोशिश कर रहा है तो उसके अंदर उसमें अड़चन डालने वाला पाकिस्तान अवश्य होगा, क्योंकि पाकिस्तान कहेगा कि अगर कोई सेमी परमानेंट कैटेगरी हो तो उसमें यह है कि एक बार इंडिया आएगा एक बार पाकिस्तान आएगा, क्योंकि दुनिया उसको इसी तरह देखती है। उसी तरह लैटिन अमेरिका के अंदर कुछ ना कुछ होगा, अगर ब्राजील आएगा तो उसमें मेक्सिको ऐसा करेगा कि उसको वो ऑप्शन नहीं पसंद आएगी। उसी तरह जापान के लिए भी वही दिक्कत होगी, जर्मनी के लिए भी इटली की तरफ से वही दिक्कत होगी। तो ये एक लाजमी बात है, पर हमको ये देखना है कि आज की तारीख के अंदर अगर हम सिक्योरिटी काउंसिल बना रहे होते तो आज की तारीख में हम सिक्योरिटी काउंसिल कैसे बनाते।
अच्छा ये बताइए, आपको लगता है कि चीन और पाकिस्तान के रहते भारत का ये सपना पूरा हो सकता है, वीटो और नॉन वीटो?
देखिए, चीन और पाकिस्तान कहीं जा तो रहे नहीं है, वो तो हमारे पड़ोसी मुल्क है, तो इसलिए ये आपका सवाल कि उनके रहते, मेरा ख्याल है कि वो तो रहेंगे। अब हमारे लिए, हमारी डिप्लोमेसी के लिए जो चैलेंज है वो चुनौती यही है कि उनके रहते ही हमको अपना मकसद हासिल करना है।
ये थे संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि रह चुके राकेश सूद। और उधर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के मुताबिक उरी हमले से जुड़े होने के आरोप में भारत में हिरासत में लिए गए मुजफ्फराबाद के दो लड़कों को आज वापस पाकिस्तान को सौंप दिया जाएगा। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें निर्दोष करार दिया था। बताया गया कि दोनों लड़के फैसल हुसैन अवान और एहसान खुर्शीद गलती से भारतीय सीमा में चले गए थे। बीबीसी उर्दू संवाददाता अब्दुल्ला फारूकी ने इन लड़कों में से एक फैसल के भाई गुलाम मुस्तफा से मुजफ्फराबाद में संपर्क किया और पूछा कि हुआ क्या था, दोनों बच्चे भारत कैसे पहुंच गए।
बड़ी ईद के کے بعد جب چھٹیاں ختم ہوئی تو یہ لڑکے کہیں سکول سے دونوں اکٹھے چونکہ ایک اسکول میں پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو اسکول کے حوالے سے جانتے ہیں مطلب دوست, وہاں سے کہیں گھومنے پھرنے کے لیے عید کے بعد چونکہ یہ الگ الگ گاؤں میں رہتے ہیں تو عید کے بعد پہلی دفعہ اکٹھے ہوئے گئے تو گھومنے پھرنے کے گھر سے کہیں گئے اور کہیں بارڈر کے پاس پہنچ گئے, چھوٹے بچے تھے جغرافی کا نہیں پتا ان کو اور وہاں پہ کہیں بارڈر پہ اس وقت حالات ٹھیک نہیں تھے, بھی نیا نیا ہوا تھا 18 یا 17 کو اڑی ہوا تھا, یہ 20 کو گئے یہاں اور 20 کو وہاں پہ کہیں اریسٹ ہو گئے تھے اور اس کے بعد 3-4 دن 5 دن ادھر کہیں ہم ڈھونڈتے رہے کلوز کانٹیکٹس میں دوستوں کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ لیکن کہیں کوئی سراغ نہیں ملا, بڑی پریشانی تھی کیا ہوا آخر بچے گئے کدھر, کسی طرف سے کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا اور 24 تاریخ کو غالباً انڈیا کے ایک چینل سے پتا چلا جی کہ یہ ایسے پکڑے گئے وہاں پہ.
اور وہاں پہ وہ جو بیان آیا ہے تفتیش اور تحقیق کے بعد تو اس میں یہ بھی کہا گیا کہ کوئی پڑھائی کے اوپر گھر والوں سے لڑائی جھگڑا ہوا تھا تو ناراض ہو کے گئے تھے, کیا یہ بات درست ہے؟
نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, بیکاز ان کے جو ریزلٹ کارڈ ہے تو وہ فرسٹ ڈویژن کے ساتھ وہ 9 سے پاس کیے ہیں اور گھر میں اور اسکول میں ایسی کوئی موومنٹ ہم نے نہیں دیکھی, میں نے کم از کم اور میرے گھر میں کسی بندے نے ایسی کوئی چیز رپورٹ نہیں کی کہ فیصل کو پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا یا اس نے کسی کو کمپلین کی میں نے اسکول نہیں جانا.
بھارت غلطی سے چلے گئے پاکستانی بچوں میں سے ایک کے بھائی. اور اب امریکہ کی ایک بچی کی کہانی جو وال اسٹریٹ کے جانے مانے وشال کا رودر سانڈ کے سامنے بہادری سے جا کھڑی ہوئی. بی بی سی سمادھاتا برجیش اپادھیائے کی واشنگٹن ڈائری.
نتھنے پھلائے کھر پٹکتا سنگھ تانے حملہ کرنے کو تیار 3200 کلو کا ایک سانڈ. پچھلے 28 سالوں سے نیو یارک میں امریکی شیئر بازار وال اسٹریٹ کے باہر امریکہ کی مردانگی کی نشانی بن کر کھڑا ہے. ٹورسٹ گائیڈ دنیا کے کونے کونے سے آئے ہر گھسے پٹے جوک پر دانت نکالنے کو تیار اور سڑک پر گرے کیلے کے چھلکے تک کی تصویر لینے کو بے قرار پریٹکوں سے کہتے ہیں کہ اگر آپ اس سانڑ کی ناک اس کی سینگ اور پچھلی ٹانگوں کے بیچ جھولتی مردانگی کو سہلائیں تو شیئر بازار سے لے کر بیڈ روم تک بس برکت ہی برکت ہوگی. اور یقین مانیے لوگ پورے جتن کے ساتھ ایسا کرتے ہیں. لیکن 8 مارچ یعنی انتراشٹری مہیلا دیوس پر اس 11 فٹ کے سانڈ کے سامنے کمر پر ہاتھ رکھے ہوا میں لہراتی پونی ٹیل والی 4 فٹ لمبی بچی کی مورتی بالکل جھانسی کی رانی والے انداز میں کھڑی کر دی گئی. یہ آئیڈیا تھا ایک انویسٹمنٹ کمپنی اسٹیٹ اسٹریٹ گلوبل ایڈوائزرز کی مارکیٹنگ ٹیم کا اور پیغام تھا کہ سانڈوں سے بھرے ہوئے امریکی کارپوریٹ جگت میں اپنی جگہ بنانے کے لیے مہیلا شکتی تیار ہے. کیا مارکیٹنگ آئیڈیا تھا سر جی, مطلب کیسے بخان کروں میں. وہ سچن تینڈولکر کی اسٹریٹ ڈرائیو یاد ہے جب بلے کی سب سے پیاری جگہ پر وہ چمڑے کی سلائی والی گیند ٹکراتی تھی اور بالکل بسم اللہ خان صاحب کی شہنائی کی گونج کے ساتھ باؤنڈری کے پار. فیلڈرز اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پاتے تھے اور تالیوں کی گڑگڑاہٹ کے بعد پتا چلتا تھا کہ ہوا کیا. تو بس کچھ ایسا ہی ہوا وہاں بھی. سیلفی لینے والوں کی قطار لگ گئی, سوشل میڈیا پر آگ لگ گئی, نیشنل انٹرنیشنل سب جگہ ذکر اس لڑکی کا اور ساتھ ہی اسٹیٹ اسٹریٹ گلوبل ایڈوائزرز کا. ایک افریقی پریٹک کا بیان, اس مورتی کو دیکھ کر میری بیٹی کو ہمت ملے گی کہ وہ کسی سے بھی ٹکر لے سکے. واہ 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 تالیاں. ایک چھوٹی سی لڑکی مہیلاؤں کو ان کا حق دلوانے میں کامیاب ہو گئی ہے. اب بورڈ روم سے بیڈ روم تک مہیلاؤں کی چلے گی, انہیں مردوں کے برابر ویتن ملے گا, وہ کیا پہنیں گی وہ کیا سوچیں گی اس پر ان کا اور صرف ان کا حق ہوگا. میٹرنیٹی لیو پر جانے پر ان کی نوکری خطرے میں نہیں پڑے گی, ان کی ہاں کا مطلب ہاں ہوگا اور نہ کا مطلب نہ. فیس بک پر اپنے ساتھ کام کرنے والی مہیلاؤں کی نگن تصویر ڈالنے والے امریکی فوجی ہوں یا انہیں کہیں بھی پکڑنے جکڑنے کا دعویٰ بڑے شان سے کرنے والے ان کے کمانڈر ان چیف, سب کی بولتی بند ہو جائے گی. آثار ابھی سے اچھے نظر آنے لگے ہیں. ایک تازہ ترین سروے کی مانے تو میلانیا ٹرمپ کی لوک پریتا پتی نمبر 1 سے اوپر چلی گئی ہے. جب ہلری کلنٹن کی ریٹنگ ٹرمپ صاحب سے اوپر جاتی تھی تو کیا نتھنے پھڑکاتے تھے وہ, کبھی کپٹی ہلری تو کبھی بل کلنٹن کے کوکرموں کی بھاگیدار کا نام لیتے تھے, ریٹنگ چھاپنے والوں کو فیک نیوز اور بے ایمان میڈیا کا نام دیتے تھے. اب میلانیا کی ریٹنگ پر وہ نتھنے پھڑکاتے ہوئے وائٹ ہاؤس میں اکیلے گھوم رہے ہیں یا میلانیا نیو یارک کے ٹرمپ ٹاور میں مسکرا رہی ہیں, یہ تو ان کی ٹویٹ سے ہی پتہ چلے گا. لیکن یہ وقت مہیلاؤں کو بدھائی دینے کا ہے. مبارک ہو, آپ کی جنگ ختم ہوئی, امریکہ نے آپ کی ساری پریشانی ایک جھٹکے میں حل کر دی ہے. بھارت میں بچپن سے ہی درگا کی مورتی دیکھ رہے مہیشاسروں پر جو اثر نہیں ہو سکا وہ وال اسٹریٹ کی اس مورتی سے ہو جائے گا. اس بار کی ہولی پر آپ بے خوف گھومیں, ایک تو کوئی بدتمیزی کرے گا نہیں اور کرے گا تو بس اسے اس لڑکی کی تصویر دکھا دیں. ہیپی ہولی. برجیش اپادھیائے, بی بی سی نیوز, واشنگٹن.
اور اب پردوشن پر بی بی سی کی وشیش رپورٹوں کی شرنکھلا کی اگلی کڑی. ब्रिटेन में शोधकर्ता अब वायु प्रदूषण को मापने के लिए कबूतरों की मदद ले रहे हैं, उनके पंखों पर एक खास तरह के सेंसर लगाकर। कबूतरों का फायदा यह है कि उनके उड़ने पर कोई रोक नहीं है, जबकि ड्रोन या किसी और उपकरण से शोध करना हो तो उन्हें घनी आबादी वाली जगहों पर उड़ाने की अपनी बंदिशें हैं। बीबीसी की विशेष रिपोर्ट दिव्या आर्य से।
Can pigeons help us in the battle against air pollution?
क्या पंछी वायु प्रदूषण के खिलाफ इंसानों की लड़ाई में मदद कर सकते हैं? ये दूर की सोच लगती है, लेकिन बर्मिंघम विश्वविद्यालय के शिक्षाविद मानते हैं कि ऐसा हो सकता है। विश्वविद्यालय के रिक थॉमस बताते हैं,
Everybody I've brought into it, they sort of first give me the look that maybe you're giving me.
मैंने इसके बारे में जिसको भी बताया है उसने आपकी ही तरह मुझे अविश्वास से भरी नजरों से देखा है कि क्या ये सचमुच हो पाएगा।
जलवायु विशेषज्ञ रिक थॉमस कबूतरों की पीठ पर छोटे सेंसर पैक लगाने की योजना बना रहे हैं।
If we know the temperature above the rooftops, then we can
अगर हमें छतों के ऊपर का तापमान पता चल जाए तो हम शहरी वायु प्रदूषण के अलग अलग मॉडल जांच कर पाएंगे।
ये सेंसर लगाना बहुत बारीक काम है, क्योंकि कबूतर का ख्याल रखने के लिए ये कबूतर के वजन का महज 5% ही है। एक कबूतर पर छोटा कैमरा भी लगाया जाता है ताकि उड़ान की रिकॉर्डिंग की जा सके।
I feel nervous. This is the first time that we've done
मुझे चिंता हो रही है, हम ये पहली बार कर रहे हैं। ये कई महीनों की मेहनत का नतीजा है। मुझे लगता है कि ये कहीं उड़कर अपने घर की ओर न चले जाएं।
They look happy enough. They look like pigeons flying to me. Did they to you?
They already know that nitrous oxide pollution.
ये वैज्ञानिक जानते हैं कि डीजल इंजन से निकलने वाली नाइट्रस ऑक्साइड सड़कों से निकलती गर्मी से ऊपर उठकर इमारतों की छत तक पहुंच जाती है। पर उसके बाद क्या? वो कहां जाती है? ये जानने के लिए इन्हें एकदम सही तापमान की जानकारी चाहिए, और वही मिलना मुश्किल है।
Kind of thought, well, birds, they fly everywhere.
हमने तो सोचा कि पंछी तो सभी जगह उड़ते हैं। अगर वो हमारे सेंसर साथ ले उड़े और अगर हमारे सेंसर बहुत छोटे होते हुए भी सही जानकारी माप सकें तो हम शहर में वायु प्रदूषण का स्तर जान सकेंगे।
कबूतर करीब 2.5 किलोमीटर तक उड़ते हैं और उड़ने के सिर्फ 6 मिनट बाद वापस लौट आते हैं। सेंसर को उतारा जाता है।
The light's still flashing. So, that's a good sign.
This is what the data shows. The route taken by
सेंसर के डेटा से कबूतरों का रास्ता और इमारतों की छतों पर तापमान की जानकारी पता चलती है। ये जानकारी उन लोगों के लिए भी मददगार होगी जो ये फैसले लेते हैं कि शहर में स्कूल और अस्पताल कहाँ बनाए जाएं। और ये डेटा वायु प्रदूषण के पूर्वानुमान से कहीं ज्यादा सही जानकारी दे सकेगा।
स्ट्रीट बाय स्ट्रीट एयर पोल्यूशन फोरकास्ट्स।
और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ सुमिरन प्रीत कौर। शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। कल ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में साइना नेहवाल ने हराया जर्मनी की फेब्रियन डेप्रिस को और पहुंच गई क्वार्टर फाइनल्स में। साइना नेहवाल ने ये जीत 21-18, 21-10 से हासिल की। वहीं दूसरी तरफ भारत की ही पीवी सिंधु ने इंडोनेशिया की डिनार डिया आयुस्टीन को 21-12, 21-4 से हराया और वो भी पहुंच गई क्वार्टर फाइनल्स में। इन खिलाड़ियों के लिए ये जीत बहुत अहम है बता रहे हैं फॉर्मर एशियन चैंपियन और बैडमिंटन प्लेयर दिनेश खन्ना।
देखिए, ऑल इंग्लैंड का जहां तक प्रश्न है, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक टूर्नामेंट है और मैं समझूंगा कि जितनी सुपर सीरीज प्रीमियर होती हैं उसमें सबसे इसका ऊपर का स्थान है। और दोनों भारतीय खिलाड़ी जो हैं, इनका क्वार्टर फाइनल में पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है भारतीय बैडमिंटन के लिए।
प्री क्वार्टर फाइनल्स में जहां जीत दर्ज की साइना नेहवाल और पीवी सिंधु ने, वहीं भारत के HS प्रणॉय को हार का सामना करना पड़ा। अब बात क्रिकेट की। डिसीशन रिव्यू सिस्टम यानी DRS से जुड़े हुए विवाद की वजह से बेंगलुरु में हुए दूसरे टेस्ट मैच के बाद एक अलग ही कंट्रोवर्सी शुरू हुई। इसी कारण BCCI ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC में ऑस्ट्रेलियन कप्तान स्टीव स्मिथ और बैट्समैन पीटर हैंस्कूम के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर है। इस सीरीज का तीसरा मुकाबला शुरू होगा 16 मार्च से और ये होगा रांची में। स्पोर्ट्स की दुनिया से फिलहाल इतना ही।
और अब मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीबीसी हिंदी के साथ बातचीत में संकेत दिए हैं कि चुनाव परिणामों में यदि उन्हें या किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता तो राष्ट्रपति शासन की जगह वो मायावती से हाथ मिलाना पसंद करेंगे। वहीं 6 मुस्लिम देशों के नागरिकों की अमरीकी यात्रा प्रतिबंधित करने के मुद्दे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कई कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बीबीसी समाचार।
तो मुख्य समाचारों के साथ ही इस सभा का समय अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया अजीत साथी ने। नमस्कार भारत से अब अपूर्व कृष्ण को अनुमति दें। शाम को दिन भर में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।